कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हमने श्रीमद् भगवत गीता के मध्यवर्ती 7-6 अध्यायों में से 3 अध्यायों का हम श्रवण वर्णन कर सके हैं। जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, लेकिन जो बीच में मसाला होता है उससे उसका नाम होता है कि ये चीज सैंडविच है या ये जो है। सात बीच के 6 अध्यायों में भी सबसे मुख्य 9वां अध्याय जो भगवद गीता का पूरा मध्य है, और 9वें अध्याय में भी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आज हम 9वें अध्याय का पूर्णाहुति का श्लोक है, जो 18वें अध्याय में भी फिर वापस भगवान कहेंगे, वो गीता का मुख्य सार श्लोक है, तो उसका आज श्रवण वर्णन करेंगे। कल शाम का सायंकाल के सत्र में हम 9वें अध्याय का 22वां मुख्य श्लोक के ऊपर चर्चा हुई थी कि भगवान अपने अनन्य भक्तों के पास जो नहीं है उनकी स्वयं व्यवस्था करते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। और ये श्लोक सिद्धांत स्थापित करता है कि भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान की वाणी, आज भगवान श्री कृष्ण से मिलना है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण साक्षात मिलता है, जिसको मिलना है मिल सकता है। इस श्लोक के बाद आज सुबह के सत्र में 3 श्लोकों में देवताओं की पूजा के साथ भगवान की भक्ति की तुलना की गई। पहले श्लोक में कहा गया कि जो देवता की श्रद्धा से पूजा करता है वो पूजा तो मुझको मिलती है, लेकिन है अविधि पूर्वक। क्यों अविधि पूर्वक है? क्योंकि वो मुझे तो जानते ही नहीं है कि मैं यज्ञ का भोक्ता और ईश्वर हूं, और इस मुझे न जानने के कारण पूजा तो मुझे मिलती है लेकिन पूजा करना वाला मुझे नहीं मिलता। वो वापस इस भौतिक जगत में स्वर्ग के भोग लोकर भोग कर आ जाता है। तो जब भगवान को छोड़कर किसी देवता से कुछ कामना के लिए पूजा करी जाती है तो कहते हैं कम बुद्धि वाले हैं, अल्पमेध सा। जब भगवान को न जानते हुए यज्ञ आदि में देवता को ही भगवान मान के पूजा करते हैं तो पूजा तो भगवान को जाती है लेकिन पूजा करने वाले को कहा गया है अविधि पूर्वकम। वो विधि पूर्वक नहीं है क्योंकि भगवान को जानते नहीं है। चैवंती वो वापस इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और फिर ये सिद्धांत स्थापित किया है जो जिसकी पूजा करेगा वहां जाएगा। ऐसे नहीं है किसी की भी पूजा करो भगवान के पास जाओगे, ये नहीं है, ये सिद्धांत गलत है। देवता की पूजा करेंगे देवलोक में जाएंगे, पितृ की पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे, भूत प्रेत की पूजा करेंगे भूत प्रेत के लोक में जाएंगे, और भगवान कहते हैं मेरी पूजा करेंगे मेरे पास आएंगे। इसका अर्थ है कि जो जिसकी पूजा करेगा वहां जाएगा, ऐसे नहीं है कि सभी भगवान के पास जाएंगे। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि ये अंग सारे शरीर के, हाथ भी शरीर का है पांव भी शरीर का है, लेकिन भोजन करने के लिए मुख ही एक है। मुख में भोजन डालेंगे तब सारे शरीर को पुष्टि मिलेगी। ऐसे भले देवता सारे भगवान के अंग हैं लेकिन पूजा भगवान की, भक्ति भगवान की होती है तभी सब देवता संतुष्ट होते हैं। नहीं तो 33 करोड़ देवताओं में किस किस को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे? एक भगवान संतुष्ट सारा जगत संतुष्ट। जड़ के पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। इसलिए भक्ति भगवान की करनी चाहिए। तब ये प्रश्न उठा कि भगवान की भक्ति कुछ मुश्किल तो नहीं है करने में, क्योंकि देवताओं के यज्ञ में तो बड़ी सामग्री चाहिए बड़ी पूजा है तब जाके स्वर्ग पहुंचते हैं। भगवान ने कहा मेरी भक्ति इतनी सरल है कि एक तुलसी का पत्ता अर्पण कर दो, एक बेर का फल दे दो, एक फूल दे दो, पानी भी दे दो केवल, लेकिन प्रेम से दे दो तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो भगवान अपनी भक्ति को बहुत सुलभ है आसान है, और भगवान की भक्ति करते करने वालों को भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान की भक्ति भगवान के पास ले जाती है, और विधि पूर्वक है। देवता की पूजा अविधि पूर्वक है, देवता के लोक तक ले जाती है और वहां से वापस आना पड़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। तो ये तुलनात्मक बात करने के बाद सिद्धांत एक सुबह हमने चर्चा किया। इसके बाद भगवान ने श्लोक कह दिया सबके लिए कि जो करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, जो लेते हो, जो तपस्या करते हो करते रहो, बस एक शब्द कहो श्री कृष्ण अर्पणम, भगवान आपको हमने अर्पण किया। तो जो मुझे अर्पण करके कार्य करता है वो उसके शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो जाता है, और क्योंकि उसने मुझे अर्पण किया तो उसका त्याग हो गया, और मुझको अर्पण किया तो मुझ में आसक्ति हो गई तो उसका योग हो गया, संन्यास योग युक्ते न, तो उसका क्या होगा? निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। तो ये बहुत सरल एक शब्द याद कीजिए, जो भी चीज आपको मिले आप कहो भगवान श्री कृष्ण हमने आपको अर्पण की। ये चेतना बनाए रखो, कोई भी अच्छी चीज कहीं लगे तो मन में आए कि ये भगवान को अर्पण करके फिर अपने परिवार के लिए प्रसाद के रूप में ले लें। इसके बाद इस श्लोक की चर्चा हुई थी, जब अब भगवान यहाँ के आगे भक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं कि भक्ति करने का अधिकार सबको है, तब ये श्लोक सुबह पढ़ा गया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या ते पिचा मेरा सबके साथ संभाव है, न मुझे कोई प्यारा है न मुझे किसी से द्वेष है। ये तो भगवान करते हैं, जैसे जज है, जैसे परमात्मा है, सबके हृदय में साक्षी बैठा है, ऐसे भगवान परमात्मा के नाते कहते हैं मेरे तो सब बराबर है, मैं तो मानव के हृदय में भी बैठा हूं, देवता के हृदय में भी बैठा हूं, कुकर सुकर के हृदय में भी बैठा हूं, मैं तो संभाव सबके साथ साक्षी हूं। लेकिन दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं ये भजनते तुम माम भक्त्या, लेकिन जो भक्त मेरा सेवा में लगते हैं वो मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते हैं, इससे वो मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान भगवान के नाते कह रहे हैं। परमात्मा के नाते तो भगवान जज की तरह सबके साथ एक जैसा है, जिसका जैसा कर्म ऐसा फल देते हैं, साक्षी हैं। लेकिन भगवान के नाते भक्तों से प्रेम करते, तो क्या ये पक्षपात है? भगवान कहते हैं हां है, मैं निरपेक्ष हूं, कोई भी मेरा भक्त बने मैं सबको निमंत्रण देता हूं, इस बात में मैं निरपेक्ष हूं। लेकिन एक बार जो मेरा भक्त बन जाता है उससे मैं सापेक्ष हूं, उससे मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तो फिर मैं उस मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं है। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता। भगवत गीता में ऐसे बहुत कम श्लोक हैं जिसमें भगवान कहते हैं भक्तों से मैं प्रेम करता हूं। तो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके लिए लिखा है कि कोई धनी ही बड़ा दानवीर हो, सबको कुछ भी दे दे, लेकिन अपने बच्चों के साथ तो उसका व्यवहार और स्नेह का होता है, तो उसके ऊपर आरोप नहीं है। लाखों रुपए सबको दे दे लेकिन अपने बच्चे के लिए सब कुछ रख देगा, क्योंकि उसका बच्चा है, तो उसमें आरोप कोई नहीं लगा सकता है। तो भगवान भक्तों को तो अपने बालक मानते हैं और उनके पालना करने का भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। तो ये भगवान का भूषण है भक्त वत्सलता, ये बहुत महान गुण है, ये भगवान का दोष नहीं है। अब भक्ति की महिमा में कहते हैं कोई दुराचारी से बड़ा दुराचारी हो, अपिचेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। इस श्लोक को सुबह, इस श्लोक तक सुबह कथा चली थी, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अपिचेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई दुराचारियों में महान दुराचारी भी हो लेकिन मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति में अनन्य भाव रखता है, साधु रेव मंतव्य, उसको साधु मानू। क्यों? सम्यक व्यवस्थो ही स, वो अच्छी जगह पे आ गया है, वो ऐसी जगह पे आया है, यही तो पवित्र होगा। तो इस श्लोक का उदाहरण सुबह दिया था, कोई आदमी गटर में गिर गया हो, दुर्गंध आती हो, लेकिन बड़े म्यूनिसिपालिटी के पानी के खुले नल के बीच बैठ के नहा रहा हो तो लोग कहेंगे भाई तुमसे दुर्गंध आ रही है, बोलो आप सत्य कहते हो मैं गिर गया क्या करूं, लेकिन अब आप देखो मैं बैठा तो पानी के नीचे हूं ना, तो सफा तो हो ही जाऊंगा ना। तो ऐसे जानबूझ के भक्त अपराध नहीं करता है, लेकिन पूर्व संस्कारों के कारण किसी माया के चक्कर में उससे कोई घिनौना अपराध भी हो जाता है तो तत्काल भगवान के पास जाके पश्चाताप करता है कि मैं दुष्ट हूं, आपका भक्त कहलाने के बाद भी इतना मैंने पाप का काम कर दिया, भगवान मुझे आप दंड दे दीजिए। तो ये पश्चाताप जो कर रहा है भगवान के अलावा और कहीं नहीं भटकता है, इसलिए भगवान कहते हैं उसको साधु मानना। तो इस श्लोक के ऊपर आचार्यों का यह कहना है, आचार्य कहते हैं कि भगवान इस श्लोक से ये कहते हैं कि जब दुराचारी को भी मैं साधु मानता हूं तो कोई सदाचारी मेरी भक्ति करे तो वो मुझे कितना प्यारा होगा। इस विचार से इस श्लोक को उदाहरण दिया है। और दूसरा मत ये है कि भगवान के शरण लेने के बाद हमारे पूर्वजनों के संस्कार होते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती है, वो प्रयास करने के बाद भी कभी न कभी हमसे गलती हो जाती है, लेकिन पश्चाताप करने से भगवान ऐसे दुर्घटना घटित होने से उसको त्यागते नहीं है, उसको साधु मानते हैं क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है। एक बड़े आचार्य हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक के ऊपर बहुत बड़ा विचार किया और आश्चर्य उनको लगा। दुराचारी का मतलब है विक्रम, विक्रम का मतलब जो छवेद में कहा है उसके विपरीत काम किया है। विक्रम कहते हैं जो शास्त्र के नियम के विरुद्ध काम किया जाए उसको विक्रम कहते हैं। तो दुराचार तो विक्रम है, और भजत्ता अनन्य भाक ये तो शुद्ध भक्ति है। और आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं वो धर्मात्मा बन जाएगा। ये श्लोक भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद वाला श्लोक है, अर्जुन ने कहा कितना टाइम लगेगा उसको साधु बनने में, भाई दुराचारी है आप कहते हैं मैं इसको साधु कह लूं, ये कब साधु बनेगा, कितना टाइम लगेगा। तो भगवान ने कहा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, क्षिप्रम का मतलब एक क्षण में, बहुत जल्दी क्या बन जाएगा धर्मात्मा। शश्व शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। आखिरी लाइन को बाद में पढ़ेंगे। तो बनेगा क्या धर्मात्मा जल्दी, तो धर्मात्मा बनने का मतलब है वेद के अनुसार काम करने वाला। तो विक्रम करेगा तो उसको शुद्ध भक्त मानो और फिर वो कर्मी बन जाएगा, ये आपस में तालमेल बैठता नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है कि ये श्लोक भगवान ने गोपियों के ऊपर घटित करके कहा है। गोपियां भगवान की मधुर बांसुरी की तान सुनकर घर परिवार पति सजन स्वजन सब छोड़ के वन में अकेली रात को चली गई, ये तो सबसे बड़ा दुराचार है और क्या है। आचरण के विचार से दुनिया के नीति शास्त्र से कोई स्त्री पतिव्रता अपने घर बार परिपुति पति परिवार पुत्र को छोड़ के और जंगल में रात को 12 बजे किसी और से मिलने जाए तो यह दुराचार हुआ कि नहीं हुआ। तो गोपियां तो ऐसे गई थी, लेकिन गई क्यों थी, अनन्य भाक, भगवान की केवला भक्ति उनके हृदय में थी। तो उनके दुराचार को दुराचार नहीं, उनके दुराचार को रास लीला का संज्ञा दे दी कि ऐसी अनन्य उनकी भक्ति भगवान में थी। और बोला धर्मात्मा का क्या अर्थ है, बोला जो गोपियों के इस भगवान की भक्ति के कार्य को ठीक तरह जो समझ लेगा वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो धर्मात्मा तो वो बनेगा जो इसको समझेगा कि गोपियों ने सब कुछ छोड़ा लेकिन काय के लिए छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा। यही तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजमामेकं शरणं व्रज, सब धर्म छोड़ के जाति धर्म कुल धर्म सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। तो गोपियों ने यही तो किया और क्या किया, जो भगवान ने मांगा वही तो किया। तो इसलिए गोपियां तो है अनन्य भक्त, उनका तो भगवान में आसक्ति है, उसके अलावा और किसी को जानती भी नहीं है। तो ये भाव बहुत उत्तम भाव दिख रहा है कि ये श्लोक का भाव संसार में कोई किसी ने प्रश्न अभी पूछा कि भगवान विकृत होके शंकर बन जाते हैं फिर ऐसा आशीर्वाद गलती क्यों करते हैं। अगर कोई बड़े पुरुष में महापुरुष में गलती देखता है तो उसको अपराध लगता है। एक बार चेतना महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा अच्छा ब्राह्मण भक्त चला गया। कहा चेतना महाप्रभु आपको तो हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, बहुत श्रद्धा है हमारी, लेकिन ये नित्यानंद जो आपके साथ है, ये सन्यास लेने के बाद भी रेशमी कपड़े पहनता है, पान चबाता है, जिसका आए उसका खाता है, हमको इसमें दोष दिख रहा है। महाप्रभु ने कहा बड़े आदमी में दोष देखने वाला अपराधी हो जाता है। महात्माओं के क्रिया को आप नहीं समझते हैं, कार्य को आप समझ नहीं सकते हैं। महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते हुए एक कन्या बनाई वाक नाम की, और उसी अपनी प्रकट की हुई कन्या के प्रति मन में थोड़ी देर के लिए रजोगुण का भाव आया और उसके पीछे भागा दौड़ा। ये देखकर मरीचि के 6 पुत्र हंसे। तो ब्रह्मा जी जैसा भगवान के अंग से उत्पन्न गुण अवतार, जो अपनी मुख से कहता है कि मेरी वाणी से कभी गलत कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि भगवान के मैंने चरण पकड़ रखे हैं, उस हंसने वालों को देवताओं के पद से राक्षस बनना पड़ा। वो राक्षस हो गए, हिरण्यकश्यप के यहां राक्षस हुए, फिर उनको श्राप मिला तुम्हारा पिता तुमको मारेगा। वही 6 देवकी के पुत्र हुए जिनको कंस ने मारा, जो कालनेमी राक्षस था। तो वो 6 असुर थे। और महाप्रभु ने पूरी कथा बताते हुए कहा कि जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारका में अपनी माता देवकी को प्रणाम करने गए, तो माँ देवकी ने कहा, बेटा आपने उज्जैन में अपने गुरु शांदीपुनि मणि के बेटे को, बहुत समय मर चुका था, वापस लाके गुरु दक्षिणा में दे दिया था, मेरे 6 पुत्र में दूध भी नहीं पिला पाई, मेरे सामने क्रूर कंस ने पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया था, मैं उनको देखना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बलराम बलि महाराज के सूतल लोक में गए, बलि महाराज ने उनका स्वागत किया। कैसे पधारे? बोला ये 6 बच्चे जो आपके पास असुर जोड़ी में हैं, मेरी माँ इनको देखना चाहती है। कृष्ण बलराम उन 6 बच्चों को लाए और उनको देख के देवकी के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया, उनके स्तन में दूध बह आया और भगवान के प्रसादी दूध को पीकर वो वापस देवता बने। देवता कोई गलत काम नहीं करते हैं, वो भगवान की योग माया लीला के लिए कुछ कराती है, तो उसमें दोष देखना, यही ये श्लोक कह रहा है। दुराचार दिखे किसी में तो भी भगवान का भक्त है तो आप दोष दृष्टि करोगे तो दोष आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा, क्योंकि उसके आप भाव को जान नहीं सकते। कभी कभी ऐसे कार्य करते हुए दिखते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है भगवान जाने। इसलिए भगवान की भक्ति करने में कभी कहीं घाटा पड़ने वाला नहीं है। अब आखिरी श्लोक की लाइन पढ़ते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बनेगा, शाश्वत शांति निगच्छति। अर्जुन ऐसे देखने लगा, ये दुराचारी है भगवान, इतना जल्दी कैसे धर्मात्मा बनेगा। तो भगवान को मानो थोड़ा सा रोष आ गया, बोला प्रतिज्ञानी है कौन ते है, जाओ प्रतिज्ञा करो, अर्जुन तुम जाओ शहर के बीच में चौराहे के ऊपर ढोल पीट के दुनिया को कठा करो और घोषणा करो कि श्री कृष्ण कह रहा है नमे भक्त प्रणश्यति। तुम लोगों से प्रतिज्ञा करो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, विनाश होता नहीं है मेरे भक्त का। हो सकता है फिसल गया हो, उठ जाएगा, गिर गया हो, मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा उसका। अर्जुन ने कहा आप ही प्रतिज्ञा करो, मुझसे क्यों प्रतिज्ञा करा रहे हो। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, अर्जुन इसी महाभारत युद्ध में मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। इसलिए भक्त के किए हुए वचन को मैं कभी झूठा कहने नहीं देता हूं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, ये कल आपने ड्रामा देखा भगवान नरसिंह देव का, इसमें नरसिंह देव कहते हैं अपने भक्त के वचन को सदा मैं सत्य करता हूं। सत्य विधातुम, जैसे ब्रह्मा का लिखा हुआ विधाता का होना, ऐसे मेरे भक्त का वचन हो तो मैं उसको सत्य करता हूं। निज भृत्य, मेरा जो अपना भक्त है सेवक है, उसने कह दिया खंभे में है तो मैं खंभे से भी निकल के दिखा दूंगा, कहीं भी बोलो वहां है वहीं मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त ने कह दिया है तो उसका वचन कभी मैं झूठा नहीं करता हूं। इसलिए अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तू ये दुनिया को वचन दे दे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने कहा इसी लड़ाई के अंदर भीष्म पितामह एक वचन करेगा और उसके वचन की रक्षा करके मैं अपना वचन तोड़ दूंगा। ये तो मैं नेम बदलता हूं, अपना वचन तोड़ता हूं, लेकिन भक्त के वचन को झूठा नहीं करता हूं। भीष्म भक्त ने वचन किया तो उसका वचन मैंने सत्य किया, अपना ही वचन तोड़ दिया। महाभारत में ये कथा आती है। प्रभुपाद जी एक दिन प्रवचन में बता रहे थे, एक दिन दुर्योधन ने जाके कहा पितामह मैंने बड़ी गलती की, आपको सेनापति बनाया, मेरा मित्र कर्ण सेनापति होता तो मेरे को मेरे भाइयों की रोज मृत्यु देखने को नहीं मिलती। मेरे भाई रोज भीम 10-15-20 मार रहा है और मेरी सेना गाजर मूरी की तरह काट रहा है पांडव, और पांचों पे भाई जिंदा है अभी तक। भीष्म को क्षत्रिय था, बहुत बुरा लगा, बोला मैं पूरी शक्ति से लड़ रहा हूं। नहीं नहीं, पांडवों से आप पक्षपात करते हैं। 5 बाण निकाल के बोला ये कल बाण पांडवों के लिए है। अब दुर्योधन के मन में आया कि कहीं इससे बाण रात को भीष्म पितामह से कोई ले ना जाए। बोला बाबा मेरे को दे दो पितामह, सुबह मैं आपको दूंगा। बाण अर्जुन लेके चला गया और बाण लेके दुर्योधन चला गया। अर्जुन सोया हुआ था, श्री कृष्ण ने कहा पार्थ उठो। बोला मैं थका हुआ हूं। अरे तुम्हें चिंता नहीं है? बोला चिंता आप करो, हम सारा दिन परिश्रम करते हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, आपने कहा है लड़ो तो लड़ रहे हैं, अब चिंता आप करो, उठ जाओ। नहीं थका हुआ हूं, आराम करने दो। जब 3:30-4 का टाइम हुआ बोला अब तो उठ जाओ। बोला क्या बात क्या है कृष्ण, आज मुझे आप सोने नहीं दे रहे हैं? बोला अभी दुर्योधन के पास जाना है। बोला दुर्योधन के पास क्यों? बोला एक वचन दिया था दुर्योधन ने, आपको याद है? बोला के किस वचन की बात कर रहे हो? बोला जब आप वनवास में थे और दुर्योधन को चित्ररथ गंधर्व ने बंदी बना लिया था और आपने उसको छुड़ाया था, न करण छुड़ा सका था और न कोई उसके और साथी छुड़ा सके थे, तब उसने आपको एक वचन दिया था अनुज क्या मांगते हो, तब आपने कहा था कभी और मांग लूंगा, जाओ आज वचन मांग लो अपना। बोला क्या मांगू? बोला उसके पास 5 बाण भीष्म ने रखे हैं, वो मांग लो। अर्जुन रात को चला गया दुर्योधन के शिविर में। दुर्योधन ने कहा पार्थ इस वक्त कैसे आए? बोला एक वचन आपने मुझे दिया था, आज मैं वो वचन मांगने आया। बोला क्या चाहिए? राज चाहिए, राज दे दो, युद्ध समाप्त करना है युद्ध समाप्त कर दो। बोला नहीं, युद्ध तो ऐसे चलेगा, अपनी वीरता से जो जीतेगा वो राज करेगा, लेकिन वचन जो आपने मुझे दिया था उसके बदले में आपके पास जो ये 5 बाण भीष्म पितामह के ये दे दो। और दुर्योधन ने अपने वचन की रक्षा की और 5 बाण दे दिए। अर्जुन बाण लेके आ गया। सुबह भीष्म पितामह युद्ध भूमि में शंख बजा के कहता है दुर्योधन 5 बाण दीजिए राजकुमार। दुर्योधन मुंह लटका के कहता है पितामह वो तो रात अर्जुन ले गया। बोला अर्जुन? अर्जुन को कैसे पता लगा? ये कृष्ण का काम है, ये कृष्ण का काम है। अरे उसने मेरे वचन को तोड़ने के लिए ये किया है। आज मैं गंगा पुत्र वचन करता हूं कि हरि को अस्त्र न उठवाऊं तो गंगा पुत्र न कहूं। आज मैं ऐसा भीषण युद्ध करूंगा या तो भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अपने प्रिय सखा अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा भीषण युद्ध किया उस दिन के अर्जुन तो बाण चलाना क्या, उसके बाण की प्रत्यक्षा एक टूटे लगाए उससे पहले दूसरी तोड़ दे भीष्म पितामह। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा है कि आज अर्जुन संकट में है, कूदे हैं रथ से और नीचे रथ का पहिया पड़ा था टूटे का, टूटे रथ के पहिए को हाथ में सुदर्शन चक्र की जगह पे रथ चरण रथ का पांव उठाया है और जब कोसे नौजवान शेर किसी बूढ़े हाथी के ऊपर लपके, ऐसे जब कृष्ण लपके हैं, अब भीष्म पितामह हाथ जोड़ के कहता है भगवान आपने मेरे वचन की रक्षा कर दी और अपना वचन तोड़ दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उधर उसने अस्त्र शस्त्र भीष्म रख दिया। तो भगवान से भक्त की जब प्रतियोगिता होती है तो भगवान हारते हैं और भक्त जीतता है, और इसी में भगवान की और भक्त दोनों की महिमा होती है। तो नमे भक्त प्रणश्यति, यशोदा और कृष्ण के बीच में प्रतिद्वंद हो गया। यशोदा कहेगी मैं बांध के रखूंगी और कृष्ण की भगवता शक्ति कहेंगे नहीं बंधेगा। प्रयास किया, रस्सी के ऊपर रस्सी कठी करती गई लेकिन दो उंगल रस्सी छोटी हो रही है। लेकिन जब गोपियों ने कहा यशोदा इसके भाग्य में विधाता ने बंधन लिखा नहीं है तो तू क्यों बांधने की प्रयास कर रही हो, यशोदा कहती है तुम्हारे घर में माखन चुराता है मटकी फोड़ता है तब हमारे पास शिकायत लाती हो, आज मेरी मटकी फूटी है तो कहती है छोड़ दो, शाम हो जाए इसको बांध के रखूंगी। भगवान ने पहली बार यशोदा की ओर देखा कि मेरी मैया शाम तक, अभी तो सुबह के 5 बजे और शाम तक प्रयास करेगी मेरे को बांधने का। देखा भगवान ने कि मैया के परिश्रम के कारण से पसीना बह रहा है, सारा श्रृंगार बिगड़ गया है, बालों में लगे हुए फूल बिखर गए हैं। भगवान के हृदय में करुणा आ गई और भगवान हार गए और बंध गए और यशोदा जीत गई। तो भगवान तो ऐसे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा, कोई मुझे कहे कि मैं अपना वचन तोड़ता हूं मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे कहते हैं भक्त वत्सल ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई कहे कि ये मॉरल नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन कहते हैं भक्त वत्सल है बस यही मुझे अच्छा लगता है। और इस श्लोक के बाद भगवान ने कहा कि ये तो इस जन्म का पापी है, अभी दुराचार कर रहा है, लेकिन कभी कोई पाप योनि हो, पाप योनि का अर्थ होता है किसी पापी के घर में पैदा हो, जैसे कसाई के घर में किसी का जन्म हो गया, शिकारी के घर में जन्म हो गया, बहुत बड़े अपराधी के घर में जन्म हो गया, तो कोई पाप किया होगा तब वहां जन्म मिला होगा ना, उसको पाप योनि कहते हैं। और कुछ और वर्ग, ये पहला एक हो गया इस जन्म का दुराचारी, अब दूसरे पूर्व जन्म का पापी हो, जैसे निषाद है, निषाद जंगल में रहने वाले डाकू कहलाते हैं, पापी कहलाते हैं, वो तो महाराज वैण के शरीर के मंथन के अधोभाग से प्रकट हुआ और उसको वन प्रदेश में रहने का आदेश दिया कि शहर में मत रहो, और वो निषाद कहलाया और उसका वंश आज भी जंगल में लोगों को लूटता रहता है। लेकिन उस निषाद को भगवान राम ने गले लगा के कहा मेरे मित्र तो कोई पाप योनि भी हो लेकिन भगवान का शरण ले ले, भगवान कहते हैं तो उसको मैं स्वीकार करता हूं, वैसे समाज नहीं स्वीकार करता है उसको, मर्यादा में धर्म और वर्ण आश्रम नहीं स्वीकार करेगा लेकिन मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो ये श्लोक पाठ कीजिए, माम ही पार्थ व्यपाश्रय ये पिसो यह पाप योन्या स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परां गतिम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं एक तो कोई पूर्व जन्म के पाप के कारण किसी पापी के घर में पैदा हुआ हो, जैसे शिकारी मृगारी है, पशुओं को आधा घायल कर रहा था। नारद ने कहता है कहा आधा क्यों मारते हो, तड़पता हुआ क्यों छोड़ते हो? बोला हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आ रहे हैं, यही तो हमारा धंधा है, पूरा मार दिया करो ना, तड़पा के क्यों मारते हो? बोले इसका तड़पना अच्छा लगता है हमको। लेकिन फिर जब नारद ने उसको उपदेश दिया तो वो बहुत बड़ा महात्मा बन गया, वो बहुत बड़ा महात्मा बन गया। तो ऐसे पापी भी, एक था पाप योनि चोर, पहले नंबर का बेईमान, उनके खानदान ने ये कहना था हमारा ये नेम है कभी पहले तो सत्संग में जाना नहीं है, मंदिर में जाना नहीं, अगर चले जाओ अचानक किसी कारण से तो कान में उंगली डाल देना, सुनना कुछ कुछ मत सत्संग में, ये हमारी पाप योनि का नेम है। तो चोर थे, कहीं से चोरी करके जा रहे थे, पीछे सरकार के सिपाही लगे तो कोई सत्संग के अंदर घुस गए तो सबको याद आ गया कि कान बंद करना है, कुछ सुनना नहीं है। एक के पांव में कांटा लग गया, अब पांव से कांटा निकाले तो हाथ तो कान पे नहीं रख पाया, और उस वक्त सत्संग में महाराज के मुख से निकला जो देवी देवता होते हैं उनकी न तो छाया होती है और न ही धरती के ऊपर चरण पड़ते हैं, इतना सुना तब तक तो कान में हाथ डाल दिया, वहां से भागे। आगे सरकार ने उन चोरों को पकड़ने के लिए एक को देवी का रूप धारण करा दिया और बाकी उसके नाच करके बीच में देवी खड़ी है, लोग पूजा कर रहे हैं उसका। तो डाकू ने कहा ये तो देवी का हम भी अब प्रणाम कर लेते हैं तो बच जाएंगे। ये जो सत्संग में दो शब्द सुन के आया था, इसने देखा इसकी छाया भी हो रही है, इसके पांव भी जमीन में पड़े, इसने बोला ये तो सत्संग में कह रहे थे देवता नहीं हो सकता है, वो वहां से खिसक गया और वो तो था ही पुलिस का बनाया हुआ, बाकी सब डाकू पकड़े गए, ये बच गया, ये सत्संग में दो शब्द सुन के आया। अब ये बच गया तो गया एक संत के पास, बोला महाराज आज मैंने सत्संग का प्रताप देख लिया, मैं नहीं सुनना चाहता लेकिन सुना दो शब्द बच गया, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, लेकिन चोरी नहीं करो, चोरी नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा खानदानी पेशा है, लेकिन आप हमारे को शरण में लेके उपदेश दो। महात्मा बड़ा भला आदमी था, भाई देखो एक तो झूठ मत बोलना बेटा, झूठ मत बोलना, ठीक है महाराज झूठ नहीं बोलूंगा। बोला मंदिर में कहीं आरती होती हो तो उधर आरती को पीठ दे के जाना मत, खड़े रहना, बस ये दो काम करना भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। अब एक दिन राजा के महल में चोरी करने जा रहा है और सेनापति का वेश धारण किया तो अंदर जाता है तो कोई पूछा कौन हो, बोला चोर, भाई झूठ तो बोलना नहीं है, महाराज से वचन करके आया, बोला चोर, तो लोग डर गए कि सेनापति अपने आप को चोर कह रहा है, तो अपने घर में कोई आता है चौकीदार कौन है तो कह रहा अरे चोर हूं क्या, जाने दिया। अंदर जाके महारानी का सारा सामान चुराया और वापस महाराज का घोड़ा लेके बाहर भागा, तो सेनापति के वेश में घोड़ा भी राजा का ले जा रहा है, क्या बात है, कोई नाम नहीं लिया, कौन है, चोर, तो सब हट गए। सुबह पता लगा कि सामान भी गया, चोर भी, कोई घोड़ा भी ले गया राजा का, पीछे सिपाही गए, ये भागता भागता जा रहा था तो एक मंदिर में आरती हो रही थी, घोड़े को बाहर बांध दिया, माने संत ने कहा है आरती को पीठ दे के नहीं जाना है, आरती में खड़ा हो गया, पीछे सिपाही आ गए, देखें तो राजा का घोड़ा दिख रहा है लेकिन अंदर आदमी को देखें तब तक घोड़े का रंग बदल जाए, बड़ा आश्चर्य हुआ ये हो क्या रहा है। आखिर उसको पूछा के ये घोड़ा तुम लाए, बोला हाँ, बोला राजा के वहां चोरी किए, बोला हाँ, कोई झूठ तो बोलना नहीं है ना। तो राजा के पास लाए, बोला ये सामान कहाँ है, बोला ये पड़ा है। राजा ने कहा ये तो मैं नाम, ये तो बड़ा नामी चोर है, हमारे राज्य में इसको पकड़ने के ऊपर बहुत इनाम रखा हुआ है, पुरस्कार है, ये आज सच कैसे बोल रहा है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुमको हम जो क्राइम डिपार्टमेंट है उसका तुम्हारे को मिनिस्टर बनाते हैं, क्योंकि तुमको पता है चोर कहाँ कहाँ रहते हैं, उन सबको पकड़ना, बाकी तुम राज में रहो। वो सत्य कहने के कारण एक सत्संग सुना, एक साधु के वचन का पालन किया तो चोरी छूट गई और वो क्राइम का मिनिस्टर हो गया और अभी सब डाकुओं को पकड़ रहा है, क्योंकि डाकुओं सबको वो जान ही रहा था, उसको मालूम है कौन बेईमान कहाँ रहता है। तो एक सत्संग के शब्द से ऐसे बड़े बड़े पाप योनियों का उद्धार होता है। कैसे भगवान उद्धार करते हैं ऐसे पापियों का, एक शिकारी जंगल में रोज जंगल में शिकार करने जाता था, एक साधु तपस्या कर रहा था, तो उसने कहा देखो, साधु को प्रणाम करके जाता और साधु ने एक दिन क्या किया कि वो शिकार करके लाया कोई जंगल से, बोलो महाराज ये लो आपके लिए हिरण मार के लाया, बोला ले जाओ ये कहाँ लाए हो, अपराधी हो तुम, किसी का हत्या करके लाए हो। बोला महाराज फिर आप किसका शिकार करते हो, भाई जंगल में रहते हो तो आप भी तो शिकार करते होगे ना, देखो हम शिकार नहीं करते। बोला किसका शिकार, बोला हम काले मृग का शिकार करते हैं। बोला काला मृग कैसा होता है, बोला सांवला सा होता है, सर के ऊपर मोर पंख लगा होता है, हाथ में बांसुरी होती है, ऐसा मेरा मृग को शिकार करना है। बोला महाराज हम आपको वचन देते हैं ये मृग हम पकड़ के लाएंगे, आपने कह दिया ना आपको लाके देंगे। वो शिकारी पापी हिंसक, वो संत ने क्या उसको 10 रास्ता बता दिया, जंगल में जाके जाल बिछा के बैठ गया, काला चाहिए, मोर पंख वाला चाहिए, बांसुरी वाला चाहिए, 3 दिन न खाया न पिया और बैठा है। तो आखिर भगवान ने कहा देखो तो सही, कितना विश्वास है संत के वचन के ऊपर, पाप कर्मी है, खाया पिया कुछ नहीं है, और भगवान ठुमक ठुमक करते आए और सीधे जाल में आए। इसने बोला हाँ आज संत का शिकार मिल गया, जाके उसको उठा के ऐसे पीठ के ऊपर टांगा है और जाके कहता महाराज आपका काला मृग मिल गया। महाराज ने कहा ये किसी और को मार के आया। बोला जाओ भाई छोड़ दो। बोला महाराज खोला तो छोड़ भाग जाएगा, जीवित लाया हूं। महाराज बाहर निकल के देखे ये तो भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा के लाया है। बोला इसको छोड़ो ये निकलेगा नहीं। बोला भागेगा। बोला नहीं भागेगा। और भगवान को प्रणाम करके कहते भगवान मेरे को 50 साल हो गया यहां तपस्या करते हुए, इसको 3 दिन में कैसे हाथ आ गए। बोला आपने इसके ऊपर कृपा की और इसने आपके वचनों के ऊपर विश्वास किया तो मैंने कहा कि आपको तो दर्शन देना ही था, लेकिन इसका भी कल्याण हो गया। तो ऐसे पाप योनी भी भगवान कहते हैं अगर मेरा आश्रय ले ले, मेरे भक्तों का संग कर ले तो वो भी मुझे पा लेते हैं। तो आप बताओ कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। और फिर भगवान ने 3 और नाम लिए हैं, स्त्री वैश्य तथा शूद्रास। ये नाम इसलिए लिए हैं कि वैदिक समाज में जनेऊ स्त्री को नहीं पढ़ता है, इसका मतलब गुरु के आश्रम में वेद पढ़ने नहीं जाती, ये वैदिक काल का नियम है। इसलिए उनको प्रायः शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। और भगवान कहते हैं वो भी मेरा भजन कर ले तो मैं उन सबको स्वीकार, ऐसे ऐसे जो चतुर्थ वर्ण है वो भी प्रायः गुरु आश्रम में नहीं पढ़ने की उसको इच्छा ही नहीं होती है। और व्यवसाय को तो इतना रजोगुण के पैसे के पीछे पागल होते हैं कि सत धर्म के पीछे नहीं जा सकते हैं। ये भी अगर मेरा, व्यासदेव ने कहा महाभारत तो मैंने लिखी इन 3 वर्णों के लिए और उसके अंदर भगवत गीता को रख दिया है, जो है तो उपनिषद है तो वेद, लेकिन मैंने उसको महाभारत में रख के स्त्री को वैश्य को और शर्मिक को भी चतुर्थ वर्ण को भी सौभाग्य प्राप्त करके भगवान की भक्ति करने का ये सरल साधन दे दिया है। वो माताएं जो भगवान को प्रेम से सेवा करती हैं, कुंती महारानी जिसकी प्रार्थना भागवत में पहले नंबर पे है, देवहूति माता जिसका 2 नंबर का बड़ा उपदेश भागवत में है, ये तो भागवत माताएं हैं, लेकिन सामान्य कोई वैश्या जैसी भी कोई हो लेकिन भगवान की भक्ति करे तो भगवान कहता है मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूं। वो कुब्जा कौन सी धर्म का काम करने जा रही थी, कंस को जाके चंदन लगाती थी, उसको भगवान श्री कृष्ण ने सुंदरी कहकर उसकी सेवा लेकर उसको न केवल सुंदर बनाया लेकिन उसको भगवान ने स्वीकार किया। एक वृंदावन के मंदिर के गोस्वामी पुजारियों का सेवाधारी सामान लेने के लिए आगरा जाता था बैलगाड़ियों में सामान लेने का जमाना था, तो कहीं देखा तो अच्छा एक नृत्य करने वाली अच्छा कंठ से गा रही है, लोगों को लुभा रही है। इसके मन में आया कि देखो भगवान ने सुंदरता भी दी है मधुर कंठ भी दिया है लेकिन ये तो लोगों का रंजन कर रही है, ये अगर भगवान का रंजन करे तो इसका कल्याण हो जाएगा। वो जैसे स्टेज से गा के मंच से गा के नीचे उतरी, ये कोठारी को कोठारी कहते हैं मैनेजर को, कोठारी कहता है बेटी तुम हमारे साथ चल के हमारे गोपाल के लिए गाओगी। उसके आंखों में आंसू आया कि मेरे को बेटी कह दिया आपने, यहां तो लोग वहशी आंखों से हमको देखते हैं, शिकारी की तरह देखते हैं और आपने स्नेह से मेरे को बेटी कह दिया, आप जहां कहेंगे मैं नाचूंगी। बाबा बोला बेटी बैठो मेरे साथ और बैलगाड़ी में उसको बिठाया। वृंदावन में आया तो लोगों ने कहा ये अच्छा खासा मंदिर का मैनेजर और विश्वास पात्र गोस्वामियों का एक नाचने वाली गाने वाली को अपनी बैलगाड़ी में कैसे बिठा के लाया है। लेकिन गोस्वामी को विश्वास था कि ये महात्मा है, बड़ा भगवान का भक्त है, उसने अपने हाथों से उसको श्रृंगार करा के सजा के और भगवान के सामने कहा कि इसको गा के सुनाओ और इसको नाच करके दिखाओ। और जब उसके सामने वो गा रही है और नृत्य कर रही है तो उसका ऐसा भगवान में मन लगा कि वही कीर्तन करते करते उसके प्राण निकल गए, सारी जन्म का पाप चला गया और भगवान के चरणों में उस भक्त ने उसको पहुंचा दिया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है शास्त्र में, ऐसे बहुत से उदाहरण है जिनसे इन सब का कल्याण होता हुआ, तुलाधार वैश्य का कल्याण हुआ और बहुत बड़े सेवकों का कल्याण हुआ। ये सारे सेवक थे धनु नाई है, वो भगवान की भजन करने गए तो भगवान उसकी जगह काम करने चले गए। तो ऐसे बहुत सों का भगवान ने उद्धार किया है। जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान इन सब का उद्धार होगा, हमारा तो नाम इस लिस्ट में आया नहीं, हमारी बारी भी आएगी कि नहीं, इन सब का तो उद्धार होगा हमारा क्या होगा। तब भगवान ने कहा किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋष्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अरे अर्जुन जब इन सब का उद्धार होगा तो फिर आप ब्राह्मण के लिए पूछ रहे हो, पुण्य आत्मा भक्तों के लिए पूछ रहे हो, तुम तो राज ऋषि हो, इनकी बात ही क्या है। बोला इनमें क्या खूबी है, क्या खास बात है इनमें। बोला इनको मालूम है कि ये जगत अनित्य है, सदा रहेगा नहीं, ये अनित्य जगत है और यहां असुखम है, यहां सुख भी नहीं है, ये जानते हैं। बोला फिर क्या करूं भगवान। तो भगवान ने आदेश दिया भजस्व माम, मेरी सेवा करो। तो अर्जुन ने पूछा भगवान आपकी सेवा कैसे करूं, तब ये श्लोक कहा, ये श्लोक पूर्ण आहुति का है, आप इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरो मामेवेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्प्रायणः। यही श्लोक 18वें अध्याय में आएगा, केवल एक शब्द बदलेगा। वहां भगवान कहता है मैं वचन देता हूं और यहां कहता है कि वो मेरे पास आएगा, वहां सिर्फ शब्द प्रतिज्ञा करते हैं भगवान। ये चार सूत्री प्रोग्राम है भगवान का। मन मना, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। मन है हमारा सूक्ष्म शरीर, भगवान कहते हैं तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो मन है, जो दूसरे शरीर में ले जाने का कारण है, वो तुम मुझ में लगाओगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त हो गया। और मन मना का दूसरा अर्थ है कि जो मेरे मन की बात है वो तुम करो। तो भगवान के मन की बात है भगवत गीता को, ये 18वें अध्याय में आएगा, सीखो और श्रद्धालुओं को सिखाओ। जो भगवत गीता का ऐसे प्रचार करता है उससे न पहले कोई प्रिय था, न भविष्य में कोई होगा और न आज है। तो ये भगवान के मन की बात है कि भगवान की इस वाणी का प्रचार किया जाए। कौन है मन मना, उदाहरण दो। बोला गोपियों ने मन अपना भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उद्धव ने कहा गोपियां मन भगवान में लगाओ। बोला मन तो एक ही था उद्धव, वो तो कृष्ण को दे दिया। तो मन मना का उदाहरण है गोपियां। भव मद भक्तो, ये भगवान का आदेश है, मेरे भक्त बनो। और भक्त है हृदय का काम, हृदय में भावनाएं होती हैं और भगवान भावना का भूखा है। तो कहते हैं तुम्हारे हृदय, तुम्हारा दिल मेरे को दे दो, इसका मतलब प्रेम मुझसे करो। ये तो हो गया सूक्ष्म शरीर और हृदय की बात। अब कहते हैं माम नमस्कुरु, शरीर से मुझे नमस्कार करो, शरीर से मुझे नमस्कार करो, मद याजी मेरी पूजा करो। बोला क्या होगा, तुम निश्चिंत होके वापस मेरे पास आ जाओगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और पूरी भगवत गीता का एक श्लोक में कहा जाए कि भक्ति का भगवान ने कहां वर्णन किया है, तो ये श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो यहां नवा अध्याय पूर्णाहुति पे आकर पहुंचता है। ये श्लोक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी भगवान ने फिर समय दिया 18वें अध्याय में दोबारा आएगा तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज 7 दिन तक आपने 3 अध्यायों को सुना, 7, 8, 9, और भगवान इन अध्यायों के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति का जागृति करे, भक्ति की जागृति हो, आपके हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा प्रेम की उत्पत्ति हो। इन भावनाओं के साथ भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करके आप सबसे विदा लेके हुए वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इतने सब भगवान के चरणों में इतने इस दास के लिए अरदास करो कि भगवान की सेवा में इस वाणी से जो सेवा हो सकते वो करने का सामर्थ्य दे। श्रील प्रभुपाद की, भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता की दाई गौर प्रेमानंदे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 अध्यायों का ही पाठ हो सका है, आप इन 3 को पढ़ के देखेंगे तो और रस आएगा। अपने आप पढ़ने से 25% समझ में आता है, सुनने के बाद जाके पढ़ोगे तो 50% समझ में आएगा। नहीं, सुनोगे तो 50 और सुनने के बाद जाके पढ़ेगे तो 75% समझ में आ जाएगा, बाकी 25% तो आजीवन अनुभव करने से समझ में आएगा। तो भगवान है साक्षात, किताब नहीं है। जब आप में श्रद्धा देखेगा तो भगवान अपने इन शब्दों के अंदर से प्रकट होकर आपको अपना अर्थ बताएगा, इसको भाव का अर्थ कहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। धन्यवाद।
प्रभुजी सुषमा सार्वभौम प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।